ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आदर्श पारिवारिक जीवन पर चर्चा का विषय है। ये श्रीमद्भागवत के सातवें स्कंध के 14वें अध्याय में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते बताते हुए हैं। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा प्रकट की तो नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव कृष्ण पर पूर्ण आश्रित रहना तथा भक्ति के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरु के उपदेशों तथा भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभ आरंभ श्रवणम अथवा सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखों से सुने। इस तरह गृहस्थ में अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही अर्जित करें। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ वृद्धि करने के लिए अत्यधिक उद्यम न करें। यद्यपि गृहस्थ को अपनी जीविका कमाने के लिए ऊपर से अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु भीतर से उसे भौतिक लाभ के अनासक्त रहकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ वर्ताव या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए होनी चाहिए, उनमें लिप्त नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों पर ऊपर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सार तो यही है कि उसे गुरु तथा शास्त्र द्वारा बताए गए वृत्ति परक कर्तव्यों में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धन कमाने के लिए कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य है कृषि गौरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अत्यधिक धन आ जाए तो इसका समुचित उपयोग होगा कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया जाए। गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है वह चोर माना जाता है और प्रकृति के नियमों को द्वारा वो दंडित है। गृहस्थ को निम्न वर्ग के जीवों तथा पशुओं पक्षियों तथा मधुमक्खियों से स्नेह करना चाहिए और अपनी संतान के समान उनसे व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के विषय के लिए वह पशु या पक्षियों को न मारे। उसे चाहिए कि कुत्तों या अधम प्राणियों की तक की आवश्यकताओं को पूरी करें और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों का शोषण न करें। वस्तुतः श्रीमद् भागवत के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ एक महान साम्यवादी होता है जो हरेक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित कर दे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी से अत्यधिक लिप्त न रहें। उसे चाहिए कि वे अपनी पत्नी को भी अतिथि सेवा में दत्तचित होकर लगाएं। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करे उसे पांच कार्यों में व्यय करे। भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के स्वागत में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपयुक्त विधि से हरेक की पूजा करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु तब तक न खाए जब तक वह भगवान को भेंट न जा चुकी हो, ऐसा कि भगवत गीता में 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया कि यज्ञ शिष्टा से न संतो मुंचन्ते सर्वकल विषयी। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं क्योंकि ये यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते। गृहस्थ को चाहिए कि पुराणों में उल्लिखित तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें, इस तरह अपने परिवार समाज देश तथा अंततः मानवता के लाभ के लिए उसे भगवान की पूजा में लगना चाहिए। तो ये सारांश श्रीमद् भागवत में दिया गया है। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को वैसे आज्ञा दी है, कि भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपना जन्म खुद का जन्म सार्थक करो। स अर्थक, तो अर्थ यानी पैसे नहीं, सार्थक कहा है। पैसे आएंगे लेकिन सार्थकता नहीं आएगी तो सार्थक करना क्या बात होती है। जिस हेतु के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो अर्थ के लिए हमें मेहनत करनी होती है। मनुष्य जीवन पशुओं की तरह रहने के लिए कहां दिया गया है। जो मनुष्य सिर्फ पांचवी वृत्तियों आहार निद्रा भय और मैथुन में ही रक्त रहते हैं वो पशु है, पशुओं को आदेश नहीं देते। मनुष्य हो तो उसको आदेश मिलता है कि जन्म सार्थक कर और बाद में उपकार कर दूसरों का, दूसरों को मदद कर। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति का प्रसार हरि नाम माध्यम से के लिए जो अवतार धारण करना, उसमें भारत भूमि के साथ जुड़े हुए जो जो व्यक्ति हैं उनके लिए आदेश है। सिर्फ दैहिक जन्म नहीं, आध्यात्मिक जन्म भी जिसने पाया है वो भारत भूमि यानी कि अपनी वैदिक संस्कृति से जो जिन्होंने दूसरा जन्म पाया है यानी कि विधिवत से जिन्होंने ये वैदिक धर्म का अंगीकार किया है, भक्ति का अंगीकार किया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आदेश। जन्म दो प्रकार के होते हैं, दैहिक जन्म और आध्यात्मिक जन्म, लेकिन आदेश तो दोनों के लिए एक ही है। जो भारत भूमि में जन्म लेता है, देह प्राप्त करता है, तो ये देह में तो वो धारणा रखता ही नहीं, देह मिला है आत्मा को क्योंकि इच्छा है, भारत भूमि में मिला है तो अवश्य वो संस्कृति के संपर्क में आएगा, इसलिए उसकी विरासत बन जाती है कि जन्मजात ही उसकी विरासत वैदिक संस्कृति की है, तो उसे वैदिक संस्कृति की आज्ञा के अनुसार अपना जन्म सार्थक करने की जिम्मेदारी होती ही है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के फल, भगवान के नाम के फल, भगवान का प्रेम जो है उसे माली बनकर बांटने का आह्वान किया, मैं अकेला कितना बांटू, इसलिए सबको आदेश दिया है कि जन्म सार्थक करो और फल बांटो, दूसरों पर उपकार करो। उपकार करने की अपेक्षा से हमें कुछ देना नहीं चाहिए, उपकार के पीछे हमें कोई भावना मिलेगी ऐसी या कोई वस्तु मिलेगी या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसे उपकार नहीं कहते। भगवान तो दान के लिए भी कहते हैं, दिएते दानम अनुपकारिणे, अनुपकार, उपकार की अपेक्षा से उपकार नहीं करो, अब मैं चलो आप पर उपकार करता हूं, आप मेरा भी संभालोगे ना। ये ट्रेडिंग उपकार नहीं, बिना अपेक्षा किसी का हित करना वो अनुपकार ही नहीं, वो सच्चा उपकार है। सही। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के नौवें अध्याय में इसकी स्पष्टता हुई है। श्लोक संख्या 42 और 43 में हमें पता चलता है। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दे दिया कि जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है तो उनको सर्वप्रथम उसका जिंदगी का उत्तरदायित्व जो है, जो प्रभु प्रत्यय थे, उसको आगे बढ़ना है, वो सार्थक करना चाहिए। और बाद में दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए, उसे उपकार के। तो उसे समझाते हुए श्रीमद् भागवत का श्लोक उद्धृत करते हैं, चैतन्य चरितामृत का। एतावान् जन्म साफल्यम नृणाम इह देहेषु प्राणै अर्थे धिया वाचा अर्चनम देहिनम सदा। श्रेय अर्चनम, श्रेय अर्चनम सदा। श्रेय और प्रेय उपकार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। किसी को यदि हित करना है तो तुरंत लाभ देने वाली प्रक्रिया भी होती है और लंबे समय तक लाभ देने वाली भी प्रक्रिया है। गैर लाभ की तो बात ही नहीं। भगवान की भक्ति का ये जो धंधा है ना, व्यवसाय, उसमें घाटा कभी आता नहीं। लेकिन हमारी मनोभावना क्या है, हमारी धारणा क्या है। जैसे कि भक्ति के बिना हम यदि देवताओं की पूजा इत्यादि में व्यस्त रहते हैं तो उसमें जो आत्यंतिक या तात्कालिक लाभ हम चाहते हैं, तुरंत हमें कोई फायदा मिल जाए, इसी तरह सिर्फ फायदे पर हम नजर करके देवताओं की शरण ले लेते हैं, तो ये काम चलाओ लाभ को प्रेय कहते हैं। देवताओं की शरण में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेय तो काम चलाओ लाभ है, वो तो चला जाएगा, लेकिन उससे मनुष्य का जो वैदिक धर्म का तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा। जो यदि अपना सनातन लाभ के लिए, जो श्रेय कहलाता है, उसके लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। उत्तम लाभ के लिए, उत्तम फायदे के लिए, यानी कि आत्मा की उन्नति, आत्मा की मुक्ति और आत्मा का सनातन व्यवसाय, गोलोक धाम में भगवान की निरंतर जो सेवा है वो स्थापित करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। देवताओं के पास काम चला फल प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता कहां बताई, वो तो कंजूसाई बताई, अल्पमेधसाम मूर्खों के लिए बताई। अल्पमेधसाम भगवान कहते हैं, अल्पमेधसाम देवताओं अल्पमेधी नहीं है, मनुष्य अल्पमेधी है। मायावादी भगवान और देवताओं या मनुष्य में भी अंतर नहीं रखते, वो लोग उल्टा मान लेते हैं कि देखो इन लोगों ने, ये हरे कृष्ण वालों ने देवताओं का अपमान किया। अरे महामूर्ख, उन मूर्खों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। सही, तो वो उल्टा ही मानेगा। मूर्ख अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन जो जीवन का तात्पर्य जानता है, तो प्रभुपाद कहते हैं ए फूल इज सेलिब्रेटेड एज लॉन्ग एज ही कीप्स हिज माउथ शट। मूर्ख यदि अपना मुंह बंद रखता है तब तक उसकी सराहना होती है। जैसा ही मुख खोला उसमें सारी अस्पष्ट बातें पता चल जाएगा और मायावाद का प्रतिनिधि बन जाएगा। यानी कि जैसी उसकी भाषा सुनते ही हमें पता चलता कि ये क्या बोल रहा है, शास्त्र तो ऐसा कह नहीं रहा। यानी कि बुद्धिमान मनुष्य ये तुरंत पहचान जाते हैं। मूर्ख को मुंह खोलने दो, बाद में पता चल जाए। लेकिन यदि हम भी मूर्ख हैं और मूर्खों की बातें सुनते रहते हैं तो हम महामूर्ख कहलाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी भाष्य सुने ले होइर सर्वनाश। इसलिए मूर्ख होना जन्म की सार्थकता के लिए नहीं, मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकते, वो मूर्खों के पीछे ही जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता, देवताओं को परेशान करते हैं, अपमान करते हैं भौतिक भोगों की कामना के लिए, इनको अपनी चपरासी कराने के लिए। वृकासुर इत्यादि शिव जी को परेशान कर रहा था अपनी काम इच्छा पूर्ण करने के लिए। आप देखोगे कि क्या हम जिनके पास जो सीखना है, देवता तो विशुद्ध भक्त होते हैं, इनके पास भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से रामचंद्र जी की सेवा की, सही ना, फिर भी हम तो उनके पीछे अच्छि नव निधि के दाता, दाता दे दो हमें, दे दो आप मुझे सिद्धि दो। आठ प्रकार की सिद्धि होती है। हनुमान जी आपके पास है, मुझे सिद्धि चाहिए, हनुमान जी दे देंगे, लेकिन करेंगे क्या? रामचंद्र जी की सेवा करेंगे सिद्धियों पाकर? नहीं, हम हमारा मकसद कुछ और ही होता है। हमें तो बड़ा हनुमान का भगत हूं या हनुमान जी को परेशान कर रहा है, हनुमान जी की भक्ति में तू विघ्न डाल रहा है क्या? इसी तरह हम देवताओं को अपनी काम वासना काम ही स्थिर हत ज्ञाना प्रपद्यंत अन्य देवता। तो जन समाज में और ज्यादातर गृहस्थ जो अपनी काम वासना या दूसरों की काम वासना के लिए ऐसी प्रवृत्ति में पूरे पूरे जुड़े होते हैं, यानी कि गृहस्थ का ग्रह स्थिर घर में स्थिर रहकर भगवान के प्रति हमें कुछ अनुशासित होकर जीवन बिताना है, उसकी तो बात ही नहीं करते। तो एतावान जन्म साफल्यम देही नाम इह देहेशु, हम देही नाम यानी कि आत्मा है, लेकिन इह देहेशु हम देही है, देह में बसने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्राण अर्थ धिया और वाचा, हम चार चीज भगवान को अर्पित कर सकते हैं, अपने प्राण अर्पण कर सकते हैं, ताकत नहीं है, चलो अर्थ दे दो, अर्थ देने की भी ताकत नहीं है, तो बुद्धि दे दो, भगवान की सेवा में बुद्धि लगाओ, बुद्धि भी नहीं है, बेवकूफ हो, चलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वाचा दे दो भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हरेक मनुष्य की ये फर्ज है कि दूसरों के हित के लिए और भगवान का जो लक्ष्य बनाकर दूसरों के हित में भी सेवा के रूप में, यानी कि अंतिम श्रेय के लिए जो जी रहा है, तो उसे अपनी अपने प्राणों द्वारा, अपनी दौलत द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा और अपने शब्दों द्वारा सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी श्रेयस और प्रेयस का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, श्रेयस और जिसे अंतिम लाभ के लिए जो हमेशा पुण्य देती है, ऐसी प्रवृत्ति श्रेयस कहलाती है, और प्रेयस यानी कि जो तुरंत तात्कालिक फल देने वाली है। वो भी पुण्यशाली है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि बच्चे लोग ज्यादातर खेलने के लिए ही चाहना करते हैं, उनको स्कूल को भी जाने के लिए इच्छा नहीं होती, सारा दिन रात वो लोग खेलना ही चाहते हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। देखो ये कौन किस प्रकार की प्रवृत्ति है, श्रेयस है या प्रेयस है? प्रेयस, ठीक। हम ये भी देखते हैं कि कृष्ण भगवान के लीलाओं में, बाल्य लीलाओं में, कि जब वो बच्चे थे तब अपने मित्रों के साथ खेलना ही पसंद करते थे, वो तो घर भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि माता यशोदा उनको खाने के लिए बुलाती थी, वो खेला ही करते थे। यशोदा माता को बाहर आना होता है और उसे मनाना पड़ता है कि चल भैया खा ले, तो इसी तरह हर एक बच्चे का यह स्वभाव बन जाता है कि दिन रात वो खेलना चाहता है और अपनी तंदुरुस्ती की भी परवाह नहीं करता। तो ये प्रेयस का उदाहरण है जो तात्कालिक उसे आनंद के प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति बताता है। लेकिन जो श्रेयस होता है तो श्रेयस सनातन अवस्था के लिए लाभकारी प्रवृत्ति कहलाती है। वैदिक संस्कृति के अनुसार हरेक मनुष्य भगवत भक्त होना चाहिए, उसे भगवान क्या है वो समझना चाहिए, भगवान कौन है वो समझना चाहिए, भगवान कैसे है वो समझना चाहिए, और भगवान कहाँ है वो भी समझना चाहिए। भगवान के साथ उसका क्या संबंध है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि ये सनातन अवस्था वाली लाभकारी अपनी निजी स्थिति की पहचान कराता है, इसलिए आत्यंतिक लाभ कहलाता है। और ये लाभ की तुलना से दूसरे लाभ आते नहीं, इसलिए उसे श्रेयस कहते हैं। और जीव का हमेशा कल्याणकारी प्रवृत्ति का सूचक है। तो श्रीमद् भागवत में ये बताया है कि हमें श्रेयस के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, चाहे वैसे कोई भी आश्रम में हो, लेकिन गृहस्थों के लिए खास। यदि वो श्रेयस भूल जाते हैं तो ग्रह मेधी बन जाएंगे, गृहस्थ नहीं रहेंगे, ग्रह मेधी बन जाएंगे। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी यह है कि खुद श्रेयस की प्रवृत्ति में जुड़े और दूसरों को जुड़वा लें, और उनका अपनी सारी जिंदगी, पैसे, उनकी बुद्धि और शब्द, उनके वचन इत्यादि सब श्रेयस की सेवा में लगाने चाहिए। यदि कोई श्रेयस के लिए उसके जीवन में रस ही नहीं है तो वो श्रेयस के बारे में कोई प्रचार भी नहीं कर सकता, तो दूसरों को लाभ की तो बात ही कहां। चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक का उदाहरण करते हैं तो उनके मन में सिर्फ मनुष्यों के लिए ही, क्योंकि पशु श्रेयस नहीं जानते, प्रेयस ही जानते। पशुता में प्रेयस होता है, श्रेयस नहीं होता, मनुष्य के लिए ही श्रेयस। मनुष्य जन्म ये प्रेयस की ये श्रेयस की प्रवृत्ति पर सफलता का आधार यानी कि सार्थकता का आधार रखता है, अन्यथा नहीं। दुर्भाग्यवश मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए भी वह पशुओं से अधम कृत्य करता है। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति का की क्षति है। आधुनिक शिक्षा पद्धति ने मनुष्य को पशु बना दिया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति ने मनुष्य को पशु जीवन दिया, मानवीयता का जीवन नहीं दिया। क्योंकि जो शिक्षक वर्ग हैं उनको मनुष्य जीवन का अध्ययन की जानकारी नहीं है। वो लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि वो अपनी आर्थिक स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति कैसे उन्नत करे, या मनुष्य समाज आर्थिक दृष्टि से कितना लाभान्वित हो, वही उनकी दृष्टि है। ये आवश्यक है लेकिन कहां तक, वैदिक संस्कृति तो अर्थ देने के लिए कोई विरोध तो नहीं करती, क्योंकि चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अर्थ तो आता ही है। तो भेद कहां है, क्षति कहां है? जब धार्मिकता यानी कि आध्यात्मिकता का मूल प्रश्न समाज में जागृत होता ही नहीं, तो वो धर्म का पालन करने में भी असमर्थ रहता। इसीलिए धर्म को छोड़कर अर्थ काम करने में तो गलती ही होगी। धर्म को छोड़कर अर्थ काम के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो वो दूषित ही रहेंगे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए या धार्मिकता बनाने के लिए भगवान के आदेशों का पालन करना होता है। जो शास्त्रों में दिया है, जब उसकी ही अवगणना करते हैं तो हम धर्म का पालन भी कैसे कर सकते। यानी कि धर्म की अवगणना करके हम अर्थ काम के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं। इसीलिए अर्थ कमाने के लिए वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्थिक संपन्न, आर्थिक दृष्टि से यदि संपन्न बनना है तो आर्थिक संपन्नता के लिए हमें किसी न किसी ढंग से पैसे लाने की आवश्यकता नहीं। जो चाह उसी ढंग से हमें पैसे लाने की आवश्यकता नहीं। थोड़े सालों पर पहले कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कितनी डिमांड बढ़ रही है। व्यापार तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, पर लेकिन वो प्रेय है। यदि प्रेय है तो धर्म के अनुष्ठानों पर कहां बना है। लोग तो धर्म का त्याग करके इनके पीछे लट्टू बनते हैं, परेशानी भी अनुभव करते हैं। कल अखबार में पढ़ रहे थे कि इंग्लैंड में जो जो व्यक्ति भारत से गए हैं ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, उन लोगों के वीजा नाबूद कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता के उपरांत पहुंच गए हैं, इसलिए सबको हटा रहे हैं, आवश्यकता के उपरांत पहुंच गए। तीन चार साल पहले अमेरिका में भी यही हालत हो गई थी। वो कौन सा वीजा था, H-1B वीजा, बहुत प्रख्यात हो गया, नामचीन हो गया। बहुत सारे लोग यहां से गए कंप्यूटर लिटरेसी वाले, लेकिन वहां परेशानी हुई, उन लोगों के लिए कोई नौकरी थी ही नहीं। कोई प्रदेश में नौकरी करने जाता है तो धर्म का पालन करने के लिए उसका उद्देश्य है, कभी कभी नहीं होता। हम लोग भी गए थे, कभी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं गए थे। कभी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं गए, ये तो धर्म पीछे पड़ा कि ये बेवकूफों कहां जा रहे। तब लोगों की आंख खुलने लगी कि सचमुच उनकी स्थिति क्या है वहां। लेकिन हम लोग जहीं से पैसा मिले ले लो, चाहे कैसा हो, आजकल के जो पैसे आ रहे हैं गाय के लहू से रंजित होकर आ रहे हैं, ये कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? आर्थिक संपन्नता नहीं, उस पर अपनी संस्कृति नहीं रखती। ये तो धर्म को, धर्म के अनुष्ठानों को ये छोड़ के, धर्म के नियमों को छोड़कर हम जैसे वैसे संपन्न होना चाहते, और सरकार भी बेवकूफ बनती है उसमें, जानबूझकर अपनी पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ डाल देती है। सरकार यदि, सरकार में धर्मनिरपेक्षता का शब्द का अर्थ गठन करके अपने देश को नास्तिक बना दिया, आस्तिक नहीं, नास्तिक, सरकार तो नास्तिक ही। शुरू शुरू में हम लोग जाते थे इन लोगों को अपने जन्माष्टमी इत्यादि त्योहार पर बुलाने के लिए, तो कॉन्सुलेट वाले दिदकते थे, नहीं नहीं हम नहीं आ सकते हैं, ये तो ऑफिशियल इनविटेशन, हम तो सरकारी हैं, हम तो धर्म निरपेक्ष हैं, किसी आप आज बुलाओगे कल हमें मुसलमान लोगों के पास जाना पड़ेगा, कोई क्रिश्चियन बुलाएगा हम तो नहीं जानते, मना कर देते थे। ये तो प्रभुपाद जी की प्रीचिंग बहुत सक्षम थी, क्योंकि देखो प्रताप रुद्र राजा इसकी जिम्मेदारी कि भगवान के सामने नतमस्तक झाड़ू लगाओ, तो आप लोगों की क्या शर्म आती है? सीधा क्या अपना व्यक्तिगत धर्म पालन करने के लिए भी तो आप मंदिर नहीं जा सकते? हम आपको कोई बड़े आदमी के रूप में थोड़े बुला रहे हैं, लेकिन आप भी भक्त हो तो आओ, कम से कम आपकी जो जो पोजीशन है, जो समाज में आपका स्थान है, वो भक्त के नाम से तो बढ़ेगा। क्या आप भक्त हो, भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हो? देश का रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे जब संस्कृति ही तोड़ देते हैं? तो सचमुच वो लोग धीरे धीरे आने लगे। अपनी रथ यात्रा में पॉलिटिशियन को ही बुलाते हैं, चलो झाड़ू लगाओ, कह देते हैं भगवान के सामने लगाते हैं। यस यस इज द लॉर्ड। लेकिन ये जब जब भारत प्रजासत्ताक बना 1950 में, राइट, 26 जनवरी, तब कॉन्स्टिट्यूशन उसका बंधारण क्या था कि भारत प्रजासत्ताक राज्य का बंधारण बिन सांप्रदायिक, जहां धर्म की अपेक्षा ही नहीं, वो शब्द है धर्म निरपेक्षता के आधार पर रहेगा। नहीं अपेक्षा मीन्स उन लोगों के मन में ये अर्थ निकला कि धर्म निरपेक्ष करना यानी कि जहां धर्म की अपेक्षा नहीं, लेकिन धर्म निरपेक्ष है, धर्म किसी की राज्य सत्ता पर आधार नहीं रखता, धर्म स्वतंत्र है, किसी पर अपेक्षा नहीं रखता। क्या भगवान को किसी पर अपेक्षा है? वह तो स्वराट कहलाता है, तो क्या इनका धर्म स्वतंत्र नहीं है? धर्म के कानून हमेशा लागू ही होते हैं, धर्म के कानून, और धार्मिक बनना ये अपना एकमात्र विकल्प है यदि श्रेय चाहते हैं। तो प्रेय के लिए धर्म में आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, प्रेय करना हो तो भगवान के बजाय देवताओं के पास जा सकते हो, पर मूर्ख तो रहे ना, सार्थक नहीं करेंगे जीवन। चैतन्य महाप्रभु का आदेश हरेक व्यक्ति जिन्होंने ये वैदिक संस्कृति में जन्म लिया, चाहे पहला हो या दूसरा जन्म हो, प्रथम जन्म मां देती है, दूसरा जन्म गुरु देता है, उनकी ये जिम्मेदारी है सार्थक कर और बाद में परोपकार। प्रभुपाद जी देश बाहर गए, वैदिक संस्कृति फैलाई और वैदिक संस्कृति के अनुयायी बनाए, हिंदू धर्म फैलाने नहीं गए थे, वैदिक संस्कृति के अनुयायी बनाए, विशुद्ध भक्त बनाए और इन भक्तों द्वारा धर्म फैलाया। तो इनका तो जीवन सार्थक हो गया, चाहे कहीं से भी आए। हम लोग देहात में भांग से देखें, ये तो गोरा है, इनको तो हमारी कोई रीतभात भी मालूम नहीं, ये है वो है, ये अपनी रीतभात भी चालू रखता है, ये कहां मिल रहा, लेकिन वो तो बाह्य। वैसे भी आपने कहां रीतभात रखी है, देश में सभी परदेशी अनुकरण कर रहे हैं। भारत में यदि अपनी कोई और चीज हो, एक ही मिलेगी, वो अपना वैदिक धर्म है, बाकी सब उधार लिए हैं दूसरों के पास। कल बोलते थे जब जूते पहनने लगे नए नए, लगता था कि मेरा जूता है जापान,
पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, यानी कि सब देश का उधार लिया है हमने, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। अरे दिल तो वैदिक होना चाहिए, हिंदुस्तानी की, ये तो शारीरिक धर्म बताया है। सब दूसरों का अनुकरण करके हम विदेशी यही बनना, देश में विदेशी बनना चाहते। एक सज्जन के साथ बात हो रही थी कि प्रदेश में वैदिक संस्कृति को न जानकर, वैसे जब दूसरी पीढ़ी आई तो ये बच्चे नहीं घर के रहे नहीं घाट के रहे, नहीं घर के रहे नहीं घाट के रहे। उन बच्चों की समस्या पर एक फिल्म बनी, इनका नाम था ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। वो बेचारा नहीं घर का नहीं घाट, नहीं हिंदू कहलाता, नहीं क्रिश्चियन कहलाता, नहीं भारतीय कहलाता, नहीं अमेरिकन कहलाता, और उसकी हकल पट्टी होती है क्योंकि कलर तो अपना ही लिया, वहां की संस्कृति में पल रहा है, तो काफी वर्णशंकर बन गया, चरित्र से भी वर्णशंकर, देह से तो वर्णशंकर होगा न होगा वो तो जब शादी करोगे तब पता चलेगा, लेकिन ये तो चरित्र से भी वर्णशंकर हो गया। खुद का चरित्र, वैदिक संस्कृति का चरित्र कहां? तब लोगों को पता चला कि हमें मंदिर की आवश्यकता है और फटाफट बांधने लगे। 200 लोगों की कम्युनिटी जिस शहर में है वो लोग मंदिर बांधने लगे, लेकिन ये मंदिर देवता देवी उसकी प्रेय के लिए बांधने लगे, श्रेय के लिए नहीं। श्रेय के लिए तो इस कौन ही काम कर रहा है, श्री प्रभुपाद की, वहां प्रेय के लिए कोई धंधा नहीं। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम समेत पाणी भी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रभुपाद जी ब्रह्मनिष्ठ, इसलिए उनका सुनना श्रोत्रिय, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैदिक संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ करते हैं इनकी तो बराबर रगड़ करेंगे। इसी तरह तैयार इस श्लोक भी कहते हैं, वो विष्णु पुराण से उद्धृत है, उसमें कहा है कि प्राणिनाम उपकाराय यद एवेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तद एव मतिमान भजेत। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य से, अपने विचारों से और अपने वाणी से दूसरों के लिए हित में उपयोग करे, और जो ये हित इस लाइफ इस जिंदगी में भी देगा और दूसरी जिंदगी में भी देने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि माली मनुष्य अमार नाही राज्य धन फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। मैं तो सिर्फ एक माली हूं, मेरे पास न तो कोई राज्य है न तो बहुत धन धान्य, मैं एक तो सादा सीधा सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ फल है कुछ फूल है और वो मैं दूसरों के हित में उपयोग करके, यानी कि उपदेश द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहता हूं। देखो अपने आप को उदाहरण बनाकर हमें क्या करना चाहिए उसका उसकी शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा इतनी विस्तृत बनाते हैं तब आदेश देते हैं, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जा। तो ये श्रेय और प्रेय की बात हुई। तो आदर्श गृहस्थ के लिए हमने जो पढ़ा ये अध्याय का संक्षिप्त में विवरण, उसमें बहुत अच्छे मुद्दे आए हैं। जो लिख रहे हैं वो लिखना चालू करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। गृहस्थ की सर्वप्रथम जिम्मेदारी, अनुभूति किए हुए साधुजनों की मुख से सुनना, उसका जो फल, उसका जो परिणाम उसे मिलता है, उसका जो लाभ उसे मिलता है, वो गृहस्थ के जीवन में इंद्रिय तृप्ति विषयक जो आकर्षण है, और खास करके उसकी पत्नी और बच्चे पर है, वो धीरे धीरे कटेंगे। ये त्याग की बात नहीं है, आकर्षण विषयाशक्त नहीं बनेगा। साधुओं के मुख से परम सत्य का वचन उसके हृदय में जब घुसता है, तब विषयाशक्ति का आकर्षण कम होगा। विषयाशक्ति से कोई घर त्याग नहीं करता, वो आकर्षण कम हुए कोई घर त्याग नहीं कर देता, बल्कि वो जिम्मेदार रहता है कि मेरी पत्नी बच्चे को मैं कैसे ये साधु संतों के वचनों के अनुसार उनके जीवन के उद्धार के लिए भी प्रयत्न करें, यानी कि उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और श्रेय के मार्ग पर वो चलेगा, ये निश्चित सत्य। और अपने परिवार वालों को भी जुड़कर चलेगा, यानी कि देहाशक्ति सिर्फ काम वासना के लिए जो ग्रह में भी जीवन जी रहा है, उसके बजाय वो गृहस्थ बनना शुरू होगा। तो सर्वप्रथम आदर्श पारिवारिक जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्व का विषय है। लोग तो कहते हैं कि वो सत्संग में कौन जाए, आप सर्वे किया है चंडीगढ़ में, सत्संग में कितने प्रतिशत परिवार भाग ले रहे हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ताज्जुब होंगे, 1% भी नहीं होगा। यानी कि बाकी का जीवन कैसा है, पशुवत, नाप तोल कर लेना। दूसरी बात बताई है, जब पैसे कमाते हैं उस दरमियान उसकी जो भावना भगवान के प्रति बनी रहनी चाहिए, भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। और जैसे कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति प्रयास भक्ति का बाधक है। तो भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष मानने की भावना भी करनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करके भक्ति का घोटाला नहीं करना चाहिए। जबकि सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही जीवन नहीं है, इसीलिए उसे अनावश्यकताओं वाली जो वस्तुओं का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। चलो मार्केट में नई चीज आई है हम भी ले जाएं, या अपना टीवी तो पुराना हो गया नया मॉडल ले ले, नया मॉडल ले ले, या कह रहेंगे कि चलो हम कुछ नहीं देखते हैं, आस्था चैनल ही देखते रहते हैं। लेकिन धार्मिक आसक्ति भी कभी कभी इंद्रिय तृप्ति का विषय बन जाती है, क्योंकि धर्म का तात्पर्य नहीं जानते। तीसरा बिंदु ये है, उसे धन कमाते समय बाहर से यानी दूसरों की नजर में तो वो बहुत कुशल पट्टू यानी साहस करने वाला और प्रवृत्तिशील व्यक्ति रहना चाहिए बाहर से, लेकिन अपनी अंतर से उसने जो सीखा है उस पर ही इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो आत्मा है, भगवान की अंश है, भगवान का सेवक है। ये भावना विरोधाभासी भावना नहीं है। शरीर और आत्मा वैसे भी विरोधाभास के वातावरण में तो है ही, ये शरीर आत्मा का कोई लेना देना नहीं। शरीर और आत्मा जहां तक टिके साथ साथ में, क्योंकि उस दरमियान हमें जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा बंधन का कारण बनता है। तो अंतरात्मा से वैसे प्रवृत्ति करते हुए भी उसको आंतरिक स्थिति बनाए रखने के लिए शिव जी का उदाहरण भी ध्यान में रखना चाहिए। शिव जी अपनी आंतरिक स्थिति कैसे बनाते हैं? अपने सारे परिवार में एक दूसरे से विरोधी तत्व होते हुए भी, हमारे परिवार में शायद विरोधी तत्व नहीं होंगे, परिवार के जितने सदस्य हैं ये सभी विरोधी तत्व हो तो परिवार कैसा चलता है, चलता है या टूट जाता है? विरोधी यानी कि विरोधी इच्छा वाले या एक दूसरे के दुश्मन बनकर जो आने वाले हैं, तो वो परिवार टिकता है क्या? हम तो आत्मा होते ये आत्मा के साथ कोई निस्बत नहीं है, ऐसे देह में रह रहे हैं। क्यों निस्बत नहीं है? आत्मा अपनी इच्छा जाहिर करता है तब वो देह प्राप्त करता है, लेकिन देह का जो स्वभाव है वो आत्मा के स्वभाव से विरोधी है, उनका बंधारण भी विरोधी है। आत्मा सच्चिदानंद होता है लेकिन उल्टी इच्छा करता है तो ये भौतिक देह उसे मिलता है जो आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला नहीं है। आत्मा अधिकार जमा सकता है और उसके पास काम कराकर वो मनमानी करा सकता है, लेकिन वास्तव में इच्छा पूरी होगी कि नहीं आत्मा को कोई गारंटी नहीं मिलती। हम कितने प्रयत्न करते हैं सुखी होने के लिए, क्या हम सुखी हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अपने आप को सुखी मानता हो तो दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, एक तो है पागल और दूसरे भगवान की भक्ति में पागल। ये पागलों का दावा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि एक पागल का दावा झूठा है, दूसरा पागल का दावा सच्चा हो सकता है। यानी कि पागल बनकर हम यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सुख की अपेक्षा करते हैं तो क्या होता है? सुख की भावना लटकती रहती है। उसके लिए गधे की तरह हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, हमें बंधन पड़ता है, हमें भय सताता है, हमें मृत्यु आती है। सही ना? प फ भ म पवर्ग मिलता है। तो ये देह पवर्ग क्यों दे? ऐसी प्रवृत्ति हो जो अपवर्ग दे, यानी कि मुक्ति दे। मुक्ति दे पवर्ग से विरुद्ध। लेकिन हम विरोधी गुणों वाले असत अचित निरानंद शरीर में बैठे हैं, ऐसे घुस बैठे हैं कि हम निकलना भी नहीं चाहते। कोई यदि निकलना चाहता है तो थक जाता है, अपने आप निकल नहीं पाता। जिसने जिंदगी दी है उसकी शरण में आए बिना, उसकी इच्छा बिना निकल ही नहीं सकता। और निकल के जाएगा कहां यदि उसे मालूम नहीं है? वो तो भगवान ही बताते, दूसरा कोई और नहीं बताता, क्योंकि वो जानते हैं कि कहां जाता है। तो हमें मुक्ति का मार्ग के लिए ये विरोधी गुणों वाले शरीर, या ये शरीर के उपार्जन जो परिवार कहलाता है, इसमें कैसे स्थिरता प्राप्त करें? हम अपने घर में किन की इच्छा बनाए रखते हैं? चाहे जिसे जो करने दो, छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने बस में नहीं होती। लेकिन शिव जी का उदाहरण कितना बढ़िया है। शिव जी के परिवार में कितने विरोधी तत्व हैं, गिनती किए? एक एक। ये महादेव है, शिव जी स्वयं सारे जगत के, ये भौतिक जगत के पिता शिव जी, और दुर्गा माता वो कभी कभी शिव जी का मानती नहीं, मनमानी करती है। विरोधी शिव जी के गले में सांप है तो गणपति के पास चूहा है, विरोधी दो। कार्तिक के पास मोर है और सांप का दुश्मन, शिव जी के पास नंदी है तो पार्वती के पास शेर है दुश्मन। स्वभाव भी अलग अलग, कार्तिक के और गणपति के भी स्वभाव में अंतर। एक बहुत चंचल और रजोगुण से पैदा हुआ कार्तिकेय, और बुद्धिमान सात्विक भाव में गणपति है, ये आराम से मस्ती से चलते हैं, और वो चलो फटाफट काम करो। स्वभाव में अंतर, सब में अंतर आप देखो। लेकिन हमने कभी नहीं सुना वहां झगड़ा हुआ या उनका परिवार टूट गया। कितना विरोधाभास, ऐसा विरोधाभास कोई परिवार में नहीं मिलेगा। इतना विरोधाभास शिव जी के परिवार में है, फिर भी इनका क्यों नहीं टूटता परिवार, और हमारा क्यों चौपट हो जाता? यदि शिव जी के भगत हो तो इनको पूछना कि भैया आप शिव जी को फॉलो करते हो? भगत हो तो फॉलो करना। ये लाभ भी नहीं पाते ये लोग अपने परिवार में। शिव जी माला करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए सब ठिकाने कोई भी शास्त्र में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि चूहे को सांप ने निगल दिया और मोर ने सांप को मारा। सब ठीक है, पार्वती भी समझ में आ जाती है, लेकिन उसको शिक्षा जरा भारी दंडनीय बन जाती है। तो आदर्श परिवार में मूल केंद्र यदि भगवान हो और सभी भगवान की प्रीति के लिए ही जागरूकता रखें और ऐसे प्रयत्न करें और इसमें अनावश्यक चीजों का संग्रह न करें न तो आसक्ति रखें, तो देखो क्या हाल। हम तो लाचार होकर खुद बंदे हैं और खुद लाचारी अनुभव कर रहे हैं। भैया देखो ना, हम तो संसारी हैं, हम कैसे छूट सकते हैं, लेकिन कैसे प्रयत्न कर सकते हैं ये पूछते ही लाचारी बता देते हैं। जानते हैं कि वो बंधन में है, क्योंकि सबकी सब पूर्ण होती नहीं इच्छा, सब अधूरे रहकर जाते हैं, जिजीविषा बनी रहती है इनकी। लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि हम किस ढंग से हम मुक्त हो सके इन चीजों से। वो पूछने वाले बहुत हैं, नहीं है। जो पूछकर भी बैठ जाते हैं आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि वो समझ रहे कि ये तो बहुत बड़ी बात कर दी महाराज, हमसे कैसे हो पाएगा। तो यानी कि उसको सिर्फ अपने पूर्व जन्म के कर्तव्य पर ही लाभ मिलने को साधु छोड़ देते हैं, ज्यादा प्रयत्न नहीं करते। जिसको श्रद्धा ही नहीं, तो श्रद्धाहीन व्यक्ति को कोई उपदेश भी नहीं देना, और श्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा करना अपराध बन जाता है ना। साधु भी कहते के भाई हो सके तो हरि नाम करो, अरे तो बहुत कह गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अरे पहले शुरुआत ही नहीं तो बात की बात ही आती ही नहीं। जब शुरुआत ही नहीं करते लोग, क्योंकि इसमें विश्वास ही नहीं, लेकिन उसके बाद की बात क्यों जानने की इच्छा करते हैं, ये सब बहानेबाजी होती है। चौथा बिंदु है, अपने पारिवारिक जनों और मित्रों के साथ उसका व्यवहार जहां तक संबंध टिकता है वहां तक ही करना चाहिए। संबंध का अतिरेक या उस पर भावुकता से खींचकर हम सिर्फ आश्रित बनने का प्रयत्न न करें। जहां तक आवश्यक है संबंधी उतना ही खर्चा करो। हम ज्यादा हद के उपरांत खर्चा करने के लिए कर्ज नहीं करें। आजकल की इकोनॉमी में बैंक सामने से लोन देती हैं, बाय नाउ पे लेटर, पहले खरीदो, यानी कि कंज्यूमरिज्म। आप हम सब मूर्ख हैं, वो चालाक है कैपिटलिस्ट, कहते हैं कि इन मूर्खों का गैर लाभ ले लो, उनको कहो चलो पैसे मारो गोली, एक साल के बाद देना, लेकिन आपका सब कुछ लिखवा लेंगे, जायदाद क्या है क्या है ये लिख लो और अपने नाम पर करो, क्योंकि यदि नहीं दे पाए तो हम कोर्ट में ले जाएंगे, यो खर्चा हम कर लेंगे, लेकिन आपका सब तेल जो है आप में वो चूस लेंगे। आपको प्रलोभन देते हैं, ओ अभी चाहिए तो सही लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं, चलो लोन ले लो, ये करो वो करो, कर्जा। तो उसे एक्स्ट्रावेगेंट यानी अतिरेक करना वो ठीक नहीं। तो यदि परिवार में भी सलाह सूचन देने वाले बहुत होंगे, ओ पापा जी आप ये नहीं कर पाते, तो देखो ने मेरा मित्र ये टीवी ले आया है, कैसे किस्तों पे ले आया है, ऐसे करो कि यदि कोई थोड़ी आमदनी बची है तो मम्मा जी आपकी किट्टी में उपयोग करो और पैसे मिलेंगे, ज्यादा मिल जाएंगे, तो किट्टी बिजनेस चल रहा है, ये इंद्रिय तृप्ति का साधन बन गया। कभी किट्टी के पैसे भगवान की सेवा में दिए हैं किसने? भगवान के लिए किट्टी बनाई है? ना, हमारी इमरजेंसी की है। अरे क्लब की किट्टी कैसे इमरजेंसी कर सकती, उल्टा कर्जा करेगी। तो बहुत सारे सलाह सूचन परिवार से आते हैं, तो गृहस्थ को चाहिए कि सुने सही, लेकिन करे तो अपनी मन में। ऐसा शास्त्र कहता है कि पारिवारिक जनों से हम सूचना या समाज से भी दबाव आकर हमें कोई सूचना देता है कि देखो तेने उसका कर्जा बहुत किया है, जब पंचायत बैठती है तो निर्णय लेते हैं कहीं चलो कहीं से भी पैसे लाना पड़ेगा और उसका दे दे, तो यानी कि कर्जे पर कर्जे करो और उसको दे दो, एक कर्जा हटाने के लिए दूसरा कर्जा करो। घर में बकरी पेट दी है तो ऊंट को घुसाओ तो बकरी निकलेगी, लेकिन ऊंट निकालने वाला कोई नहीं, यानी कि कर्जा पर कर्जा पड़ा। बकरी तो छोटी है, जो छोटी चीज नहीं निकलती तो बड़ी क्यों लाए, सही ना? अरे 6 साल में गाड़ी आपकी हो जाएगी, आप सिर्फ डाउन पेमेंट, 0 डाउन पेमेंट किस्ते पर चल जाओ, सही ना? वो बेचारा दोगुनी प्राइस देता है, यानी कि 6 साल में वो चौपट हो जाता है, चौपट हो जाता। तो ऐसी सलाह सूचन गृहस्थ को चाहिए कि जो भक्ति भाव में थोड़ा जुड़ा है तो सबकी सुने, लेकिन करे अपनी धारणा के अनुसार, उसकी आंतरिक स्थिति की नापतोल करने के लिए न तो परिवार वालों को फुर्सत है न तो समाज को, तो गृहस्थी का धर्म कैसे पलेगा? दूसरों की सलाह सूचन से गृहस्थी नहीं पलती, अपनी जो धारणा है श्रेय के लिए उसके आधार पर बनेगी। तो गृहस्थी गृहस्थ रहना है, सुनो सबका लेकिन करो अपने मन का। यानी कि इसका सरल उपाय हो तो गृहस्थ को अपने गुरु की मार्गदर्शन अंदर ये सब स्वीकारना चाहिए कि क्या करे क्या ना करे। गुरु के समक्ष वो अपना दिल खोल सकता है, अपनी ये परेशानियां जो हैं तो गुरु उसको उत्तेजन दे सकते हैं, और परिवार कहें कि देखो ने ये गुरु कर दिया, दुश्मन बना दिया, हमारी तो कोई चलती नहीं, ये भगत बन जाएंगे हम सबको रास्ते पर रख देंगे, सही? ऐसी भावना करने वाले हैं। शास्त्र में जो कहा है वो प्रमाण है, वही गुरु कहेंगे, इसीलिए गुरु साधु साधु वाक्य चित्ते ते कुरियो एक, किसी भी कार्य की व्यवस्था में आपको नापतोल करना है तो तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, ये भगवान संदेश देते हैं अर्जुन को। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। पराम गतिम तो अपना श्रेय है, तो श्रेय के लिए गृहस्थ जीता है, श्रेय ही उसका जीवन सार्थक करने वाला है, प्रेय नहीं। तो ये श्रेय की जो रीतियां हैं उसमें शास्त्र प्रमाण जमना ही चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थित, यदि कोई शास्त्र गुरु इत्यादि सूचनों की अवगणना करता है तो वो न किसी भी प्रकार सिद्धि पाता है, न सुखम पाता है, न परांगतिम पाता है। व्यापार गृहस्थों का मूल व्यवसाय होना चाहिए, लेकिन ये व्यापार उद्योग वाला व्यापार नहीं, उसे उग्र कर्म करते हैं कहते हैं, बल्कि खेती पर निर्भर होना चाहिए। यानी कि सभी गृहस्थों आदर्श गृहस्थ में जो व्यापार सीधा खेती पर निर्भर है उसे अपनाने की बात, इंडस्ट्रियल वो उग्र कर्म कहलाता है। उग्र कर्म ज्यादातर तामस में रहने वाले को पसंद होता है, तो जो व्यापारी रजोगुण और तमोगुण में तमोगुण प्रधान होते हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं। यह हथौड़ा खटखटाट लोहे का काम, बहुत सारी यहां फैक्ट्रियां हैं, हम गए हैं, ये उग्र कर्म में बहुत सारी भक्ति नाश होती। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर उतरे, उनको जाना था उसके मित्र के बेटे के घर, वो करीबन 8-10 घंटे की दूरी पर था। तो बेटा तो लेने नहीं आया, बेटे ने ट्रैवल एजेंट को भेजा कि भैया जा तो उसे बस में चढ़ा देना, ये टिकट के पैसे मैं देता हूं। तो ऐसे ही उसने तजवीज की। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क बंदरगाह से निकलकर न्यूजर्सी पसार करना होता है, तो वहां देखो इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री यानी कि पेट्रोल की इंडस्ट्री। प्रभुपाद देख के, अरे भगवान, ये तो सारे लोग उग्र कर्म में पड़े। उग्र कर्म की जो इकोनॉमी होती है, आर्थिक संपन्नता उग्र कर्म द्वारा जो पैदा करते हैं, उसके घर में सुख नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं। उग्र कर्म में अशांत, सारा देश उग्र कर्म के कारण ही तो अशांत है। अमेरिका जहां देखो कोई ना कोई बहाने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उग्र कर्म से उग्र कर्म ही पैदा होता है, शांति नहीं पैदा होती है। इसीलिए उन लोगों का सारा आर्थिक जो बंधारण है वो लड़ाई के शस्त्रों ही पैदा करने के पीछे, उसके बहाने एरोप्लेन भी बनाए और पब्लिक के लिए बनाए, लेकिन लड़ने के लिए ज्यादा बनाए, और वो बेच बेच करके पैसे कमाते हैं और दूसरे पर हुकूमत चलाते हैं। उग्र कर्म, तो उग्र कर्म भक्ति विरोध है, भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि सिर्फ तामस के सामने काम करना, इसमें बुद्धि कहां लगाते हैं। एक स्क्रू बनाना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी उग्र कर्म में लपट रहे हैं, तो क्या वो नट बोल्ट खाकर जिएंगे? उनका जीवन का आधार तो खेती, और खेत भी बेच बेच कर फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं। अपने देश में वही हो रहा है। जब तक खेती प्रधान देश है तो खेती के द्वारा जमीन का कोई धुलाई या प्रदूषण नहीं होता। आज तो खेती गई, जमीन नंगी पड़ी है, इसलिए वो पैदाश भी छोड़ दी। उग्र कर्म के द्वारा जो खाद इत्यादि डाल के हमारी दुर्दशा ही हुई है। न तो एक शुद्ध पपीता मिलता है। अमेरिका ने वो अपना प्रदूषण भारत में दे दिया। उन्होंने तो कई फर्टिलाइजर्स पाबंदी लगा दी अपने देश में। खुद ने पैदा किया लेकिन खुद ने देखा कि ये तो नुकसान करता है, तो भारत में दे दिया। और भारत वाले कहे चलो हम पैदाश करें, हमें तो मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं आता। उग्र कर्म कोई मुफ्त का थोड़ा होता है। उग्र कर्म से शांति की अपेक्षा मत करो, उग्रता ही आएगी। उग्रता के अलावा कुछ नहीं आएगा। जो उग्र है वो व्यग्र है, जो उग्र है वो व्यग्र होता है, शांत नहीं होता। व्यग्र पता है ना, वो हमेशा एंजाइटी में रहता है। व्यग्र है ना, यानी कि चिंतातुर होता है। ये खेती प्रधान जो जीवन है उसमें वाणिज्य अपने आप समाता है। गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ का व्यवहार सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति करुणा के भाव से होना चाहिए। और खास करके जो निम्न जाति के पशु हैं इन पर तो सही। इन पशुओं का जतन उसे अपने बेटों जैसा करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाने के लिए इनकी कत्ल नहीं करनी चाहिए। जबकि इन पशुओं को भी अपनी जीवन की आवश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी गृहस्थ की होती है। यदि गृहस्थ समाज के ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों की जिम्मेदारी इन पर नपती है तो अन्य जीवों की क्यों नहीं। यानी कि आदर्श गृहस्थ ये सारे जीवों को पोषण देता है, सारे जीवों को। कृष्ण भावना में आत्मा की शुद्धि होते ही हमारे व्यवहार की शुद्धि आती है। कभी कभी भक्त प्रश्न करते थे, हम जब न्यूयॉर्क मंदिर में थे तो न्यूयॉर्क मंदिर में विशाल रसोई घर था लेकिन सफाई नहीं होती थी, तो ये जीव जंतु काफी आते थे, बड़े बड़े चूहे भी आते थे न्यूयॉर्क शहर में। तो भक्त लोग ने कहा कि प्रभुपाद जी ये भी तो जीव हैं, हम उनको कैसे हटाएं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये तो आपके गेस्ट हैं, आपने इनवाइट किया है, इनको हटाने की आवश्यकता क्या है। आप गृहस्थ के तो ये आतिथ्य सत्कार करो, जब बुलाया है तो उनको मारने की इच्छा करते हो, ये तो कृष्ण भावना में होता ही नहीं। यानी कि गलती आपकी है, आपने सफाई नहीं रखी। सफाई रखो तो अपने आप चले जाएंगे। जब सफाई नहीं रखते हैं तब यानी कि आत्मा स्वच्छ नहीं हुआ है अभी तक, करो, जिम्मेदारी है आपकी। जो कोई गंदगी करता है उसके यहां जाएंगे, लेकिन मंदिर में स्वच्छता तो रहनी चाहिए। ओ बहुत चूहे हो गए, चलो बिल्ली पालो, बिल्ली ले आते हैं मंदिर में चूहे निकालने के लिए। यहां है बाहर तो देखिए, आपको क्या पता रात को आती है कि नहीं, लेकिन हमने तो देखा है, अरे प्रसाद खाकर और चूहे खाकर बिल्ली बड़ी हुई। बाद में भक्त लोग कभी कभी कहें, महाराज जी ये तो प्रसाद ही खाती, चूहे नहीं खाती, काफी पट्टी बनती है और मंदिर में पड़ी रहती है भक्तों की साथ, लेकिन कुत्ता नहीं ला सकते, बिल्ली आ सकती है, कुत्ता नहीं आ सकता। सब अपने अपने नियम बनाते हैं। कभी कभी अमेरिका में पुराने मकान में मंदिर करते हैं, तो पुराने मकान में तो अगला जो उसका रहने वाला था वो छोड़ गया होगा इन सब जीवों को। अब भक्तों पर जिम्मेदारी आ गई कि मकान तो लिया, उसके साथ दूसरे जीवों की जिम्मेदारी भी ली, चलो कुछ नहीं प्रसाद खिलाएंगे। भक्त लोग मारते नहीं, लेकिन इनको पालते हैं, बाद में परेशान होते हैं। अनावश्यकता से भावुकता भी बैठ जाती है, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम अपना सिद्धांत तो यही रहना चाहिए कि जो जब आत्मा की स्वच्छ आत्मा को स्वच्छ करने के प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या अपने व्यवहार को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, तो बेदरकारी की कीमत भारी चुकानी पड़ती है। वो हम मक्खी मार सकते हैं, चूहे को नहीं मार सकते हैं, ऐसा नहीं, जीव हर एक जीव अभी प्रभुपाद बताते हैं ये जो प्रवृत्ति है सभी जीवों का पालन पोषण करना, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रसाद का वितरण आता है। एक भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि श्री प्रभुपाद जी हम तो शादीशुदा हैं, हमारी मूल जिम्मेदारी क्या, क्या हमारी मुख्य फर्ज है? तो प्रभुपाद जी ने कहा आपकी पत्नी को खाना पकाना होता है, भगवान को भोग लगाना होता है, और आपकी जिम्मेदारी जब भगवान को भोग लग जाए तो बाहर जाकर चिल्ला कर बोलो अरे कोई भूखा है, यदि कोई भूखा हो तो उसे पहले खिलाओ प्रसाद, बाद में आप अपने परिवार को और अंत में आप खाओ, बस इतनी जिम्मेदारी, आदर्श गृहस्थ। लेकिन वो समझा नहीं, वो तो हम हर रोज करते हैं कि नहीं, तो प्रभुपाद जी गृहस्थों की कोई और फर्ज है? नहीं, प्रभुपाद जी के आपकी पत्नी को कहो भोग लगाए बनाए, आप भगवान को लगाओ, बाद में बाहर जाकर चिल्ला कर बोलो अरे कोई भूखा है, कौवे को खिलाओ, इनको खिलाओ, कोई भी भूखा, बाद में आप लेना, ये आपकी मूल मुख्य जिम्मेदारी। तो प्रसाद वितरण गृहस्थों का आदर्श, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए उत्तम है ये व्यवसाय। ये परोपकार, प्रसाद वितरण से सबसे बड़ा परोपकार होता है। आमदनी का कैसे उपयोग करें, उसके लिए सूचना देते हैं कि पांच चीजों हमने पढ़ी थी। आमदनी का उपयोग भगवान की सेवा में, पूजा में, वैष्णव के आतिथ्य सत्कार में, प्रसाद वितरण में और अपने निभाव में खर्चा करना। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कितना प्रतिशत इसमें जाना चाहिए, कितना प्रतिशत उसमें जाना चाहिए। हम तो व्यापारी हैं, हमें सीधा साधा कोई फॉर्मूला बता दो कितने परसेंट देने। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि रूप गोस्वामी ने 50% का हिस्सा बांटा है। 50% भगवान का हिस्सा होता है। क्यों भाई? भगवान की शक्ति आप उधार लेते हो और आप वो शक्ति का उपयोग इन्वेस्ट करते हो कमाई करने में, यानी कि कम से कम 50% तो भगवान का निकलना ही चाहिए आपके नफे में से। तो 50% भगवान को दे दो, 50% आप रखो, उसमें 25% जो है वो आप धंधे में फिर इन्वेस्ट करना और भगवान के पास उनके हिस्से में से 25% और डालना, तो 50% हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया फिर से धंधे में। बाकी का जो 25 बाकी रहा ना, तो परिवार के लिए और आपकी इमरजेंसी के लिए। है तो सब भगवान का, लेकिन इस तरह डिवाइड की। भगवान का होते हैं तो आपको ही तो संभालना होता है, लेकिन भगवान की सेवा में जाता है कि नहीं? 100% में 50-50 का दो हिस्सा, इसमें से दोनों में से 25% निकालो तो 50 हो गया। 25 आपका, 25 भगवान का, उसका फिर से री इन्वेस्टमेंट करना होता है और धंधे में लगाना होता है। धंधा बढ़ेगा करो, पर लेकिन इसमें 50% हिस्सा फिर से बंटवारा करना पड़ेगा भगवान को, और 50 आप लो, आप और अपना परिवार करते रहो। बाद में देखोगे कि आपकी आवश्यकता कितनी। हम एक उदाहरण देते हैं कि हरगुलाल सेठ का नाम वृंदावन में हो गया, करीबन दो पीढ़ी पहले की बात है। जब छोटा था तो अनाथ बच्चा, वो ब्रजवासी वो बात करते थे ऐसी, ये हरगुलाल छोटा बच्चा अनाथ वृंदावन आया तो मंदिर में बिहारी जी के दर्शन के लिए गया। बिहारी जी, मैं भी कुछ करूं, आपकी सेवा में लगाऊं तो मैं 10% दूंगा आपको। तो बिहारी जी की कृपा से वो चाय का गल्ला लगाया, चाय का गल्ला। ब्रिजवासी, हम लोग चाय वाली में तो मानते नहीं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि चाय का गल्ला लगाया। धीरे धीरे दुकान हो गई, सही, और बाद में होटल बना दी, हरगुलाल सेठ कहलाने लगा। उसने अपना परसेंटेज बढ़ाया था और ऐसा सेठ बन गया कि उसने 90% तक देना शुरू कर दिया। बाद में उसने सोचा कि चलो, वैसे बिहारी जी ने दिया है, लेकिन बिहारी जी को हम समझते नहीं, भगवान है, सिर्फ मान्यता है, कोई गुरु तो करना ही पड़ेगा। जब इतना बड़ा सेठ हूं तो बड़े कोई साधु को पकड़ना पड़ेगा। तो उस समय किशोरी शरण बाबा करके कोई थे, तो इनके पास गया, विनम्रता से पूछा आपका चेला बनना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए एक सारा धर्मशाला इत्यादि बना दी है, आप उसमें रहो और मैं आपके दर्शन करता रहूं, आपकी सेवा। तो किशोरी शरण आए रहे और हर रोज आता, दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर चला जाता। लेकिन उसके हृदय में आशीर्वाद अपने व्यापार व्यवसाय के लिए ही आसक्ति बनाए रखा था। उसके पास कोई समय नहीं, लेकिन ये इसका नित्य नेम बन गया कि हर रोज किशोरी शरण के दरवाजे पर जाता, इनका दर्शन करता, तभी उसका दिन ठीक चलता। वो अपनी ऐसी ग्रंथि बना के बैठा। एक दिन वो गया दर्शन के लिए तो दरवाजा बंद था, तो नौकर को पूछा, अरे कहीं लोग मिलने आए बाबा जी, तो बात हो रही है। और बाबा ने कहा कि डिस्टर्ब मत करना। तो बेचारा राह देकर गए, उसका जी नहीं लगा धंधे में व्यापार में, चलो सोचा कि शाम को जाते समय कर लेंगे। फिर भी दरवाजा तो बंद ही था, तो काफी हताश हुआ कि आज मेरी अवगणना हो रही है। उसे ऐसा लगा। तो उससे बोला जाए क्या, अरे ऐसा तो क्या है कि हमें दर्शन भी नहीं, हम क्या कम भगत हैं? नहीं नहीं, वो तो साधु चर्चा कर रहे हैं, कहीं ब्रिजवासी लोग आए हैं और भगवान की बातें कर रहे हैं। अरे भगवान की बातें में सारा दिन, हमें आशीर्वाद तो दो मिनट का भी चाहिए, इतने भी फुर्सत नहीं इनको। तो ये आलोचना उसके मुंह से निकल गई। व्यापारी ढंग से परसेंटेज देखो कितनी आसक्ति भी रखता है। तो किशोरी शरण दूसरे दिन वो आए तो दरवाजा खोला, उसके हाथ में चाबी दी, मैं चला। तो क्यों, कि तुझे पता नहीं कि वृंदावन में रहकर तुझे भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए भगवत चर्चा, तेरे मुंह से कैसे आलोचना हो गई? आलोचना की, तुझे ब्रजवासियों की महत्ता पता नहीं? कोई मामूली जीव थोड़े। भगवत प्रेम की जब चर्चा होती है तो उत्तम श्रेय की बात है। तू प्रेय के लिए मुझे गुरु बना बैठा है, हमें कोई आवश्यकता नहीं ऐसे चेलों की। ले तेरी धर्मशाला तेरी चाबी, चलो। तब उसकी आंख खुली। कहते हैं कि यही सेठ ने, हरगुलाल ने राधा रानी का बरसाना था, जो आज का मंदिर है ना, तो 150-200 साल पुराना है, वो उसने बनवाया था। वहां की सीढ़ियां इत्यादि वे उसने बनवाई थी, और हमने उसके मुनीम के दर्शन किए हैं जो चपरास था। वो ऐसी बात ये लोग वृंदावन में करते हैं। कहने का मतलब है श्रेय और प्रेय का, तो प्रेय के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, श्रेय के लिए। गृहस्थ जीवन का मूल आशय होना चाहिए और उसके अनुरूप उसकी सारी प्रवृत्तियां होनी चाहिए, ये मूल लक्ष्य है। और एक महत्व का उसका कर्तव्य तीर्थाटन करना और सत्संग में जुड़े रहना, वो गृहस्थी जीवन का लक्ष्य अपने फायदे के लिए बताया गया है। क्योंकि भगवान की सेवा करते ही गृहस्थ सचमुच अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश और सारी मानवता को वो लाभान्वित कर सकता है। ये आदर्श उसके लिए बताया गया। तो आदर्श गृहस्थ जीवन में ये प्रवृत्तियां यदि हम देख पाते हैं तो अवश्य उसका जीवन सार्थक कहा जाता है। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, किसी को कोई प्रश्न है?
हाँ, जैसे भी आपने कहा कि स्टार्टिंग में लेक्चर के कि मतलब एक व्यक्ति को अपना अपने प्राण से, अपने धन से, अपने वाच से भगवान का सेवा करना चाहिए, तो प्राण से सेवा का क्या अर्थ है?
भगवान की सेवा में प्राण दे देना क्योंकि इनका अंश है।
कैसे
एग्जाम्पल? प्राण देना भगवान की प्रीति के लिए, प्राण की बाजी किसने लगाई थी? सभी भक्तों ने भगवान के लिए कितना साहस किया, प्राण की बाजी ही लगाई थी ना। हनुमान सुरसा के मुख से भी बाहर निकल आए भगवान की सेवा। कोई चमत्कार थोड़ा था? चमत्कार अपनी सिद्धि के लिए भी कर सकता है कोई, भगवान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। प्रहलाद ने क्या प्राण की बाजी नहीं लगाई थी? एक छोटे बच्चे ने उसको मारने के लिए जब प्रयत्न होते हैं, और खुल्लम खुल्ला प्रयत्न होता था, छिपा छिपा भी नहीं। भूल गए?
जैसे अभी आप एक और एग्जाम्पल दिया था कि जब भी गृहस्था का व्यापार, मतलब जो वो व्यापार करे तो वो एग्रीकल्चर हो, औद्योगिक ना हो, पर अभी जो
औद्योगिक में उग्र कर्म वाला ना हो। उग्र कर्म यानी कि वायलेंट एक्टिविटीज, जो भौतिक शक्तियों और वो जो स्फोटक शक्तियां, उग्र मीन्स वायलेंट, इन शक्तियों से जो कुछ परिवर्तन होता है अन्य चीजों बनाने में, ये शक्तियां उग्र कर्म कहलाती है। वायलेंट मीन्स वायलेंस शांति थोड़ा देता है, नहीं? तो यानी कि उसका परिणाम भी वायलेंस ही होता है। जैसे कि चलो इतनी बड़ी 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 फैक्ट्रियां और हर एक छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और असेंबल करके बॉम्ब बनाते हैं, या कोई विनाशकारी चीज बनाते हैं। आप देखो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो जो बनता है उसका कुछ न कुछ विनाशकारी प्रवृत्ति के साथ संबंध है, विनाशकारी प्रवृत्तियों के साथ संबंध है। तो क्या वायलेंट एक्टिविटी नहीं है? ऐसी एक्टिविटी शांति पैदा नहीं करती, वायलेंस पैदा करती।
तो फिर अगर उसको एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा
क्या?
लैंड ही नहीं है।
नहीं, पहले देखो एग्रेरियन लाइफ जो है उसमें माता गैया और पिता बैल, इन पर सारी इकोनॉमी भगवान ने टिकाकर बताई है। और भारत में 50 साल पहले उसका प्राधान्यता था, सही ना? तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में आप देखो, इंद्रिय तृप्ति बड़ी है जो विनाशक है, शांति है ही नहीं। शांति कहां? तो वायलेंस से वायलेंस पैदा होता है और वो मानव जाति को नाश करता है। ये धर्म के जरिए भी वायलेंस पैदा करते हैं। अमेरिकन गए या इंग्लिश लोग अपने भारत पर आए, उन्होंने ऐसी संस्कृति कहीं देखी नहीं थी, इतने जलते थे। ये तो बहानेबाजी करके मिशनरी बनकर आए, मर्सनरी लेकर आए। पहले मर्चेंट बनकर आए ना, मर्चेंट यानी व्यापार के लिए आए, लेकिन व्यापार ने क्या लाया? मर्सनरी, बंदूक के साथ सिपाही अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए लिया, और वो ही सिपाहियों ने भारत पर राज किया। बनिए बनकर आए लेकिन ठग करके देश पर राज कर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापने के पीछे क्या हेतु था? भारत को गुलाम बनाने का ही तो। सो वायलेंस का उपयोग हो गया, उसे क्या हुआ? आजादी की जो ये आंदोलन का वायलेंस में ही परिवर्तन हुआ, भगवान की सेवा में नहीं हुआ। जबकि भगवत गीता के आधार पर नॉन वायलेंस और असहकार की जो नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित की, उसके अनुसार गांधी जी ने भी अपनाई, लेकिन भगवान का सरोकार नहीं रखा अंदर, उनकी सेवा नहीं रखी, इसलिए इनकी मृत्यु भी वायलेंस हो गई। वो शांति से नहीं मरे। वायलेंस तो तामस का प्रभाव है, विनाशकारी होता है। और
भागवतम का वर्स नंबर
कहां
जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था?
एतावान जन्म साफल्य, वही तो श्रीमद् भागवत के चैतन्य चरितामृत में उद्धृत हैं। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का 22वां अध्याय और 35वां श्लोक है। ये श्लोक कृष्ण और बलराम किसका वध करके, शायद अगासुर का वध के बाद की घटना है। कृष्ण और बलराम सब अपने विश्राम के लिए पेड़ के नीचे लेटे थे, तब भगवान सोचने लगे कि ये वृक्ष देखो कितने परोपकारी है, हमें शीतल छाया देता है, हमारी सारी थकावट को दूर करता है, बहुत परोपकारी है। तो परोपकार के ऊपर भगवान के मुख से ये श्लोक निकला कि वास्तविक परोपकारिता क्या है? जन्म की सफलता पर आधार। तो ये श्लोक का संदर्भ है।
जो सबसे पहला वाला वर्स था जिसमें महाराज युधिष्ठिर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कृष्ण,
हाँ
वही
नहीं
ये तात्पर्य में संदर्भ है। महाराज को युधिष्ठिर को तो ये तो सारा चैप्टर का तात्पर्य हमने समझाया है। हमने ये इस अध्याय का जो 14वां अध्याय है, 14वां अध्याय का सारा तात्पर्य आपको मैंने कहा, मैंने कोई एक श्लोक नहीं लिया है, उसके संदर्भ मैंने वो चैतन्य चरितामृत में निकाले के परोपकार की भावना चैतन्य महाप्रभु कैसे लेकर आए और उसके मन में ये श्रेय और प्रेय क्या था, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं बता दिया, वो मैंने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। हाँ बोलो।
जैसे बोला प्रसाद वितरण की महिमा बताई, तुम्हारा जो ऐसा करने करते हैं तो जो भी कोई भिखारी लेने वाला होता है तो वो एक के बाद एक तो डिमांड रखता जाता है, कभी मनी के लेन बस की प्रसाद की वजह से, क्योंकि प्रसाद स्वीकारना नहीं चाहते मनी वाले की डिमांड करते, तो मुश्किल में हो जाता।
मुश्किल में हमें क्यों, यदि हम दृढ़ व्रत हैं कि प्रसाद के अलावा किसी को कुछ देना भी नहीं, ये यदि प्रसाद की महिमा नहीं जानता है तो उसका दुर्भाग्य है। गरीब लोग भी सद्गुणी तो होते हैं लेकिन इनको आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति की है, वो आप कराओ। हम ट्रेन में आते थे तो बहुत सारे भिखारी आए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हमने कहा जा प्रसाद ले जा, लेकिन नहीं, प्रसाद नहीं चाहिए, हमें चाय चाहिए। एक को तो हमारा खुद वो जो बेसन का चिल्ला खाते उसमें पनीर डाला था तो एक औरत को दिया, वो तो कहते कि इसमें अंडे है, इसको कौन खाएगा। अरे मैं साधु के पास अंडे कहाँ मिलेंगे, बहानेबाजी क्यों कर रही है, और फेंक देते हैं तो दुर्भाग्य किसी में। वो सब तो शिव जी भी पार्वती को एक बार बता देते हैं, शिव जी और पार्वती अपने प्रजाओं की हालत देखने लिए जाते हैं तो एक मंदिर के सामने कहीं काफी भिखारी होते हैं तो पार्वती को एक भिखारी दिखाई दिया कि प्रभु जी इनको न्याय कर दो, आपकी कृपा बताओ। भगवान कहते हैं पार्वती ये लायक नहीं है, ना 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 ना, ना मेरा मानो, आप कर दो, मैं चाहती इस पर कृपा हो जाए अनायास। तो शिव जी और पार्वती दोनों शेठ शेठानी बनकर गए, एक बड़ा तरबूज लिया शिव जी ने और उसको दे दिया, तो भिखार के तरह की दिया तो तरबूज ही दिया और कुछ नहीं, इसका क्या करेंगे, सारा दिन खाया करेंगे। शिव जी और पार्वती के देख क्या हो रहा, तो उसने क्या किया कि तरबूज लिया, शिव जी ने तो अंदर बीच की जगह रत्न भरे थे, उसने बेच दिया किसी को 10 रुपये में, सारा तरबूज दे दिया। तो शिव जी बोलते पार्वती देख ये लायक ही नहीं है, तो पात्रता तो दिखनी है। हम दान करते हैं तो भगवान कहते हैं दानम दिए थे अनुपकारिणे, हमें तो उपकार की दृष्टि से दान नहीं करते लेकिन परोपकार की दृष्टि से दान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परोपकार जो करना है तो वो भगवत प्रीति प्राप्त कराने के लिए, जिनको उसकी परवाह नहीं, यानी कि खाना मिलता है इन लोगों को तो उसको अन्नदान की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे साधा नहीं है, तेरे घर में है ना खाने का है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, ये करो विद्यादान, लेकिन ये श्रेष्ठ दान नहीं कहलाता विद्यादान। अरे विद्या का है सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति देने वाली तो विद्या होती है, तो यहां उसे ये कतल खाने भेजता है, आजकल का एजुकेशन कतल खाना बराबर है, वो कोई विद्या थोड़ी दे, अविद्या देते हैं, तो वो विद्यादान कैसे हुआ? अविद्या दान करते हैं उसे तो क्या फायदा होगा? नहीं, अपना गृहस्थ धर्म प्रति वफादारी रहेगी ना, उसको लाभ होगा। बहुत बहुत तो BA LLB हो जाएगा, लेकिन फिर से नौकरी करेगा, लेकिन भगवान तो उससे अछूते ही रहेंगे और हमें भी कोई फायदा नहीं होगा कि हमने भगवान की कोई सेवा की। तो ऐसे ना समझ होकर हाँ बहुत सारी प्रवृत्तियां हो रही है दान धर्म के नाम, और उसका भी काफी विकृति पर आ गया है, दान धर्म का रूप विकृत हो गया है अपनी नाम ना कमाने के लिए। ये बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, हाँ आगे सीट किसको मिले, कौन यजमान बने, हाँ किसकी वाह वाह हो और किसके लिखा पट्टी हो, हाँ सेठ श्री फलाना दिखना, हाँ अखबार में कितनी बार नाम आता है हमारा, वो देखने के लिए दान धर्म करते हैं। तो कहने का मतलब है ये परोपकार की भावना नहीं है, अनुपकार, यानी कि हम उपकार की भावना से नहीं करें, परोपकार की भावना से करें। पर यानी उच्च श्रेष्ठ, और कोई 10 मिनट फिर से आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।